नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यरमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सक्रिय करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी। मरने वालों की संख्या 260 से अधिक। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और मूसलाधार बारिश में 55 लोग लापता। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उप वर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया। भारत ने श्रीलंका के कच्चातीवु द्वीप के उत्तर में एक भारतीय मछुआरे की मृत्यु पर विरोध दर्ज करते हुए श्रीलंका के राजदूत को तलब किया। ओलंपिक में आज निशानेबाजी में स्वप्निल गुसाले ने भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के साथ वार्ता की। इस वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने वियतनाम के नहा तरांग में दूरसंचार विश्वविद्यालय में वर्चुअल माध्यम से सेना सॉफ्टवेयर पार्क का उद्घाटन किया। ये भारत और वियतनाम के बीच की सहयोगी परियोजना है। भारत ने इस परियोजना के लिए $5 मिलियन का सहायता अनुदान प्रदान किया है। दोनों पक्षों ने सीमा शुल्क, क्षमतावर्धन, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, समुद्री विरासत, औषधीय पौधों तथा कानूनी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रसार भारती और वॉयस ऑफ वियतनाम ने रेडियो और टेलीविजन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने ऋण सीमा समझौते तथा वियतनाम में माइसोन यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की पुनर्बहाली पर समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। अपने प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम के संबंध पिछले 10 वर्षों में प्रगाढ़ हुए हैं। दोनों देशों के संबंधों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को एक आकार दिया है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार में 85% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध हमारी साझा विरासत है, इसने आध्यात्मिक स्तर पर दोनों देशों के लोगों को जोड़ा है। उन्होंने भारत में बुद्ध सर्किट के लिए वियतनाम के लोगों को आमंत्रित किया। श्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के युवाओं को नालंदा विश्वविद्यालय का लाभ उठाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में वियतनाम भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुक्त, खुले, नियम आधारित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए भारत वियतनाम सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर चर्चा की और भविष्य के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के कई कदम उठाए। श्री मोदी ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित बनाने के दृष्टिकोण और वियतनाम के 2045 के विजन के कारण दोनों देशों के विकास में गति आई है। उन्होंने कहा कि यह आपसी सहयोग के कई नए क्षेत्रों के द्वार खोल रहे हैं। दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए कई कार्यकारी योजना बनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए नए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि $300 मिलियन की ऋण सीमा पर बनी सहमति वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को सशक्त बनाएगी। श्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने आतंकवाद और साइबर सुरक्षा पर सहयोग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत और वियतनाम वस्तु समझौते में आसियान भारत व्यापार की समीक्षा की जानी चाहिए तथा इसे परस्पर व्यापार संभावनाओं का साकार करने के लिए तत्काल संपन्न किया जाना चाहिए। श्री चिन का आज सुबह नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। श्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने राजघाट में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री चिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। श्री चिन ने मंगलवार को 3 दिन की भारत की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ कई मंत्रियों, उप मंत्रियों और व्यावसायिक प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय मंडल भी है। भारत और वियतनाम के संबंध ऐतिहासिक और सभ्यतागत है। ये संबंध सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री की वियतनाम यात्रा के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंच चुके हैं। भारत वियतनाम को एक्ट ईस्ट नीति के मुख्य स्तंभ के रूप में देखता है। भारत वियतनाम को हिंद प्रशांत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण साझेदार भी मानता है। केरल के वायनाड में वायुसेना, राज्य आपदा मोचन बल और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर बचाव और राहत अभियान चला रही है। वायुसेना के C-17 विमान ने प्रभावित इलाकों में चिकित्सा सहायता और बचाव कार्य के लिए अन्य आवश्यक उपकरणों सहित 53 मीट्रिक टन आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की है। AN-32 और C-130 विमान राहत सामग्री और कर्मियों को ले जा रहे हैं। विस्थापितों सहित 200 से अधिक लोगों को आपदाग्रस्त क्षेत्र से लाने और ले जाने की सुविधा प्रदान की है। सहायता और आपदा राहत के लिए MI-17 और दुर्ब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया है। इन हेलीकॉप्टरों ने प्रभावित क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित निकाला है। हिमाचल प्रदेश में कल रात 3 स्थानों पर मूसलाधार वर्षा और बादल फटने से बहुत नुकसान की खबर है। बादल फटने और तेज वर्षा से आई बाढ़ के कारण 55 लोग लापता और 2 लोगों की मौत हो गई है। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के झाकरी में बादल फटने की घटना में 36 लोग अभी भी लापता है। मंडी जिले के पधर के पास टिक्कन में आई आपदा में 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2 शव बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कुल्लू जिले की मणिकरण घाटी में पार्वती नदी के उफान ने शक में सब्जी बाजार के एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। मनाड़ा पावर प्रोजेक्ट 1 का बांध टूट गया, जिससे परियोजना के भूतल पर 3 से 4 लोग फंस गए। जिले में कुल 10 लोग लापता है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया है कि बादल फटने से 36 लोग लापता है। उन्होंने बताया कि रामपुर उपखंड प्रशासन ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय रिजर्व पुलिस बल और होमगार्ड की टीमों के साथ बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उप जिलाधिकारी निशांत होमर घटनास्थल पर बचाव प्रयासों की निगरानी कर रहे हैं। मंडी जिले के चूहार घाटी में तेज वर्षा के कारण बाढ़ आ गई, जिससे टिक्कन तलथू खोर में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। बाढ़ के कारण 5 लोग लापता है। मंडी के जिलाधिकारी अपूर्व देवगन राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने प्रभावित पाधर ब्लॉक के सभी शैक्षणिक संस्थानों को आज बंद रखने का आदेश दिया है। करसोग उपमंडल के सभी शिक्षण संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र भी आज बंद रहेंगे। पंडो बांध में ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को सतर्क रहने को कहा। कुल्लू जिले के मलाणा में पावर प्रोजेक्ट 1 का बांध टूट गया है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। भूंतर और आसपास के इलाकों में पार्वती नदी में भारी बाढ़ के कारण अलर्ट जारी कर दिया गया है। मणिकर्ण घाटी में उफनती नदी के कारण सब्जी मंडी की 4 मंजिला इमारत बह गई है। कुल्लू जिले के बागी पुल में भी बाढ़ से कई घर बह गए। तेज वर्षा के कारण निरमंड में सभी शिक्षण संस्थान आज बंद रहेंगे। भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी रायसन और कलाथ के पास बंद है। एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने आज आरक्षण का लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के आरक्षित श्रेणी समूहों को उनके पिछड़ेपन के आधार पर अलग अलग समूहों में उप वर्गीकृत करने की राज्य की शक्ति को बरकरार रखा है। न्यायाधीश BR गवई, विक्रम नाथ, बेला M त्रिवेदी, पंकज मीठल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने 2004 की EV चेन्नैया के फैसले को 6 के मुकाबले 1 फैसले से खारिज कर दिया। इस फैसले से न्यायाधीश बेला त्रिवेदी ने असहमति दिखाई। 2004 के फैसले में कहा गया था कि SC/ST का उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341 के विपरीत है, जो राष्ट्रपति को SC/ST की सूची तैयार करने की अनुमति देता है। भारत ने श्रीलंका के 9 सैनिक जहाज के बाद की मछली पकड़ने वाले नाव से टकराने के बाद एक भारतीय मछुआरे की मौत पर आज श्रीलंका के राजदूत को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नई दिल्ली में श्रीलंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त को आज सुबह विदेश मंत्रालय में बुलाकर घटना पर कड़ा विरोध दर्ज किया गया। मंत्रालय ने कहा कि कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त आज इस मामले को श्रीलंका की सरकार के समक्ष भी उठाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने हमेशा मछुआरों से संबंधित मुद्दों से मानवीय तरीके से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है और इस संबंध में दोनों सरकारों के बीच सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन शूटिंग प्रतियोगिता में भारत के लिए 3रा कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन क्वालिफाइंग स्पर्धा में कुसाले ने 7वें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के देशों ने ईरान की राजधानी तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हनिये की हत्या के बाद मध्य पूर्व संघर्ष को रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों को बढ़ाने का आह्वान किया है। चीन, रूस, अल्जीरिया और अन्य ने हनिये की हत्या की निंदा की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।